ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंघल भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम भ्राता जी का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप यूपी की धरनी पर देहरादून से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1962 में अर्थात साकार मम्मा बाबा के रहते आप ज्ञान में आए, जिस कारण से साकार मम्मा बाबा की पालना प्राप्त करने का आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। न सिर्फ इतना, लेकिन तभी से ही सेवाओं में संलग्न हो गए और आसाम, बिहार, गुजरात आदि स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने। 1967 में आपने लौकिक पढ़ाई में मास्टर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद आपने ONGC ज्वाइन कर लिया और बाबा की सेवाएं भी करते रहे, अपनी लौकिक जॉब भी करते रहे। 1985 में आप यूथ विंग के सेक्रेटरी रहे, जिसके अंतर्गत करीब 12 पदयात्राओं को आपने ऑर्गेनाइज किया। फिर 1988 में आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। वर्तमान में तो आप इस विंग के चेयरपर्सन हैं। इसके साथ साथ आपने कई सारी एग्जीबिशंस का निर्माण किया है, कई सारी पुस्तकें भी लिखी है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आप अवार्ड विनर भी रहे हैं। नेशनल लेवल पर तो आपको पर्यावरण श्री का अवार्ड मिला हुआ है। तो काफ़ी सेवाओं में लगे हुए हैं और सेवाएं करते करते, हाँ, बाबा तो हमेशा कहते हैं कि संगम पर हर बच्चा, वैसे चाहे वो बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, लेकिन संगम पर हर कोई क्या है, वानप्रस्थी है। तो आज अपने प्रैक्टिकल जीवन के आधार से और बाबा के ज्ञान की गहराई के आधार से हमें मार्गदर्शन देंगे कि वानप्रस्थ अवस्था क्या होती है, एक वानप्रस्थी ने कैसा जीवन जीना चाहिए। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। जब हम वानप्रस्थ जीवन की बात करते हैं तो ये हमारे पूरे जीवन का एक पहलू होता है। हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने पूरे जीवन को वैसे कई बार अलग अलग रीति से अलग अलग भागों में बांटा है, फिर भी जब वानप्रस्थ की बात करते हैं तो जीवन को कितने भाग में बांटते हैं, चार भाग में मुख्यतः। वैसे जीवन के लिए तो बहुत बातें कही गई हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो किसी ने स्टूडेंट के हिसाब से जीवन की परिभाषा की है कि जिंदगी है एक सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो, जवानी डैश बुढ़ापा कॉमा मौत को फुल स्टॉप समझो। जवानी डैश तनी हुई है सीधी, बुढ़ापा कॉमा कमर झुक जाती है अक्सर बुढ़ापे में, और मौत को फुल स्टॉप समझो। ये तो एक सेंटेंस पढ़ाई के हिसाब से हुआ है। और जीवन के लिए बहुत बात कही है कि जीवन एक किताब की तरह है, पुस्तक की तरह है, जिसके पहला और आखिरी पन्ना गायब है, बाकी पूरी किताब अवेलेबल है। इसका भाव क्या है? पहला पन्ना गायब है माने आत्मा कहाँ से आई है, जीवन कहाँ से आया है, क्योंकि शरीर ये तो सभी मानते हैं शरीर जड़ पांच तत्वों का बना है, तो आत्मा कहाँ से आई है वो गायब है पहला पन्ना, और बाद में कहाँ जाना है वो भी गायब है, उसका भी लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए जीवन के लिए वो भी कहा हुआ है। और जीवन की बात जैसे कह रहे थे कि चार पहलू, हाँ पहला कौन सा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, पढ़ाई का आश्रम, वैसे भी लाइफ कहा जाता है ना जीवन, LIFE, तो L यानी लर्निंग स्टेज, लर्निंग स्टेज माने कौन सा आश्रम, हाँ अभी जो बोला, हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें ही पढ़ाई होती है। तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, लर्निंग स्टेज। दूसरा आई से मतलब इंडलजेंस, इंडलजेंस माने जो पढ़ा है उसको जीवन में इस्तेमाल करना, इंडल्ज होना। मेडिकल पढ़ा है तो मेडिकल, इंजीनियरिंग पढ़ी है इंजीनियर, बिजनेस पढ़ा है तो बिजनेस, उसको हम करते हैं और इसीलिए उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं, क्योंकि जब उसे यूज करते हैं तो उस समय अपना लौकिक रीति से परिवार भी बढ़ता जाता है। तो एक तो पढ़ाई का हो गया लर्निंग स्टेज, फिर इंडल्जेंस LI, तीसरा F से क्या होता है, फाइंडिंग। तो फाइंडिंग माने ये तीसरा स्टेज आती है वानप्रस्थ, जब पढ़ भी लिया, कमाना भी शुरू कर दिया, काफी पैसे, 100 साल अगर एवरेज आयु कही जाए तो 25 साल तक पढ़ाई, और उसके बाद 25 साल तक जब व्यक्ति कमाता है काफी, तो कमाने के बाद उसे लगता है खाली कमाना, घर गृहस्थी पालना, यही जीवन नहीं है संपूर्ण, उसे कहीं खालीपन का आभास होने लगता है। फाइंडिंग, वो जीवन में पाता है क्या है आफ्टर ऑल, जीवन में शांति भी होनी चाहिए, ठीक है लग्जरी की चीजें खरीद लेता है, पैसा कमाता है, मकान बना लिया, मोटर खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया, आदि आदि फाइंडिंग, लेकिन असली अंदर की फाइंडिंग सुख है, शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब बातें का उसे कभी खालीपन सा महसूस होने लगता है। तो जीवन में वो फाइंडिंग इस तरफ भी उसका ध्यान जाने लगता है। तो LIFE और ई से फिर क्या होता है, एवोल्यूशन, यानी कि फाइंडिंग उसने महसूस किया कि जीवन में शांति होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन ये सब के बावजूद भी उसे उस आयु में जब तक जीवन में रहता है, नौकरी धंधा करता है, प्राप्ति नहीं होती, तो फिर एवोल्यूशन, उसके लिए वो फिर संन्यास आश्रम की तरफ, संन्यास आश्रम कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इन सब में अब बचपन की स्टेज निकल गई, ज़्यादातर पढ़ाई की निकल गई, पढ़ाई के बाद ये गृहस्थ, ये भी परिवार ही है हमारा, लौकिक परिवार हुआ, उसके साथ साथ अलौकिक परिवार ये भी होता है, फिर इसके बाद वानप्रस्थ, जो बाबा कहता है, और आज भी मुरली में बाबा ने मुख्यतः यही कहा वानप्रस्थ, अर्थात कई मीनिंग बताए बाबा ने। आज क्या क्या बताया वानप्रस्थ में, तो आज तो बहुत बताया, 12-15 मीनिंग बता दिए, क्या क्या वाणी से परे भी है और वानप्रस्थ अवस्था यानी जब आत्मा वापस जाती है परम धाम की स्टेज वाणी से परे, यहाँ पर भी जितना जितना व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है थोड़ा उधर की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस तरह वाणी से परे स्टेज कई होती है वानप्रस्थ, और बाद में फिर धीरे धीरे वो संन्यास आश्रम यानी कि वो तो संन्यास समझते हैं घर गृहस्थी का संन्यास छोड़ा, लेकिन वो संन्यासिनी बाबा ने कौन सा संन्यास बताया, बेहद का संन्यास। तो जितना ये बेहद का संन्यास भी होता है और वहाँ लौकिक दुनिया में तो फिर भी एक के बाद एक स्टेज आती है, लेकिन यहाँ पर ये सब स्टेज साथ साथ चलती रहती है। साथ साथ चलने का मतलब क्या है स्टेज का, ज्ञान में आते हैं शुरू में बचपन की स्टेज होती है, पढ़ाई की स्टेज होती है लर्निंग की, फिर और परिवार में बढ़ते हैं जब परिवार बड़ा होता है, लौकिक में भी जब परिवार में ज़्यादा मेंबर होते हैं तो आपस में थोड़ी बहुत खिटपिट होती है, अंडरस्टैंडिंग में मुश्किलात होती है आदि आदि, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, तब रियलाइज होता है अरे ये सब तो बचपन की बातें थी। अभी भी अगर बचपन की ज्ञान के बचपन की बात याद करते हैं तो आता है ये क्या बचपन की बात, ये मेरा एरिया वो तुम्हारा एरिया, ये स्टूडेंट हमारा वो तुम्हारा, ये वहाँ जाना चाहिए ये, तो ये बचपन की बातें महसूस होती हैं। और अब होता है कि अब तो बस अब हमें जाना है, फिर धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है कि ये सब जो बाबा ने कहा है बताया है ये तो सेवा बढ़ने के लिए है, अब वानप्रस्थ वाणी से परे हमें जाना है और फिर अंत में सन्यास बिल्कुल बेहद की वैराग्य वृत्ति। उस सन्यास में तो वैराग्य शरीर का परिवार का वैराग्य धन दौलत का वैराग्य, लेकिन यहाँ बाबा कहता है उसका प्रॉपर यूज और वो बेहद की वैराग्य वृत्ति। उस रीति से देखा जाए तो हमारा ये जो चारों बातें हैं ये चारों बातें लौकिक से अलौकिक में भी पूरा हमें अपने को प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए इस बात को एक इस रीति से हमें देखना है। इस संदर्भ में हमें पहले ये मम्मा की बात सुनाते हैं, तो मम्मा को का आप सबने सुना है, तो मम्मा ने कब शरीर छोड़ा था याद होगा, अभी तो आज सब दिन आ रहे हैं, 24 जून कौन सा साल 65, तब तो साकार बाबा भी थे यहाँ पर। पहले ये कंसेप्ट था ज्ञान में आते थे हम भी जब 62 में ज्ञान में आए कि सब इकट्ठे ही जाएंगे, अभी तो अंत का समय निकट है, 76 की भी बातें सुनते थे और सबको जाना है। लेकिन जब मामा ने शरीर छोड़ा तो सब थोड़ा सा हलचल हुई कि बाबा तो कहते हैं सबको इकट्ठा जाना है और अभी तो मामा चली गई, तो ये भी हुआ शायद बाबा कोई ड्रामा का पार्ट दिखा रहे हैं, तो चलो हम सब लोग योग करते हैं और मम्मा का आवाहन करते हैं बुलाते हैं। शायद बाबा कई बार ये होता है ना आत्मा जाती है बाबा कहता है कहीं छिप जाती है, जैसे कोमा में चली गई या कोई छिप गई फिर बाद में आत्मा आ जाती है फिर से पार्ट प्ले करती है, होता है ना कई बार ऐसा। तो मम्मा जब ऊपर गए सूक्ष्म वतन में शरीर छोड़ के, तो वहाँ पर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा वो थे, मम्मा वहाँ पहुँची तो बाबा ने पूछा, मम्मा आप आए, आ गए? हाँ बाबा, तो आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? मम्मा से बाबा ने पूछा, कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा पहले तो चुप रही, फिर मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया कर्मातीत स्थिति का अनुभव। तो बाबा ने कहा, अरे नहीं किया तब तक तो तुम परम धाम तो जा नहीं सकती, क्योंकि परम धाम तो वही जा सकता है जिस स्थिति में आत्मा आई है, जिस पवित्रता की स्टेज में और कर्मातीत अवस्था से आत्मा आई है, वो ही स्थिति जब तक प्राप्त नहीं करेगी तब तक आत्मा जा नहीं सकती। तो जाओ अभी आप नीचे जाओ और जो हिस्ट्री हॉल है वहाँ आपका शरीर रखा हुआ है, सब बच्चे और बाबा सब लोग योग कर रहे हैं, आपका आवाहन भी कर रहे हैं, तो जाओ वहाँ पर और जाओ कर्मातीत स्थिति का शरीर में अनुभव करके आओ। बाबा ने वहाँ पर मम्मा को ये कहा, तो मम्मा नीचे आई। तो जब मम्मा नीचे आई, थोड़ा समय तक नीचे रही, और नीचे रहने के बाद उसके बाद मम्मा फिर ऊपर गए, तो बाबा ने कहा, पूछा, बच्ची अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं किया अभी भी अनुभव। क्यों बच्चे, तुम्हें अनुभव करने के लिए तो भेजा था, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बाबा जब मैं वहाँ गई अपने शरीर में, उसमें प्रवेश भी किया, लेकिन शरीर तो जैसे बिल्कुल ठंडा हो गया था, उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई। और जब ठंडा पड़ गया था, कोई हलचल नहीं हुई, मैंने कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें तो कोई प्राण ही नहीं थे, जानी नहीं थी, तो फिर मैं आ गई। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी तो तुम्हें परम धाम जा नहीं सकती क्योंकि कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया है, अभी तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़े, और जन्म लोगे उसके बाद पार्ट बजाना पड़े, और जो भी रहा हुआ हिसाब किताब है वो पूरा करना पड़े। और तुम्हें स्मृति है कि तुम क्या बनने वाली हो? तो आत्मा तो जब जाती है, स्मृति की बाबा अपने ही बताया है कि सतयुग में हम सब जाएंगे, कि हाँ तुम तो लक्ष्मी बनने वाली हो ना, तुमसे सब धन मांगेंगे, पूरे कलप भर तक धन मांगते रहेंगे, और तुम सबकी धन की इच्छा पूर्ण करती रहोगी। लेकिन कैसे करोगी? यहाँ पर तो तुम आए, तो यहाँ पर तन मन धन समय संबंध शक्ति हर रीति से अपने को सेवा में लगाना है। तुमने लगाया भी, बहुत सेवा की, बाबा भी तुम्हें नंबर वन देते रहे, लेकिन धन की सेवा तो तुम्हारे द्वारा नहीं हुई ना, क्योंकि तुम तो घर से आए थे और एक साधारण सा कपड़ा पहन के आए थे, और बस उसके बाद तन से भी बहुत करा, मन से करा, जो भी आते थे स्टूडेंट संबंध से किया सब, लेकिन धन से तो वो सेवा नहीं। तो अभी तुम्हें इस जन्म में जाके बचा हुआ जो जो चीज है उन सब से बहुत बहुत सेवा करनी है। तो इसीलिए अब जाओ, तुम्हें फिर से शरीर लेना है, लो। और ये हर एक आत्मा के लिए वैलिड है। बाबा ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं, जो भी संगम युग में बीच में जाता है, शरीर छोड़ता है, तो उसे फिर पुनर्जन्म लेना ही है, अगर उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है। अभी तक किसका हिसाब किताब पूरा हुआ है? किसी का हुआ है? हाँ, अरे बोलो। हाँ, ब्रह्मा बाबा का। तभी तो ब्रह्मा बाबा ने पुनर्जन्म नहीं लिया, तभी तो बाबा सूक्ष्म वतन में बैठा है, सूक्ष्म रीति से सारी सेवा कर रहा है। एक ब्रह्मा बाबा ही कर्मातीत होके गया, और कोई भी आत्मा नहीं गई। बचा कुचा जो भी हिसाब किताब है, भले हिसाब किताब न भी बोले, जब दादी जी ने शरीर छोड़ा था प्रकाशमणि दादी ने, तो बाबा ने कहा था बच्ची का हिसाब किताब तो लगभग पूरा हो गया है, लेकिन कुछ जो थोड़ी सेवा बाकी है इन नए माता पिता नए संबंधियों के द्वारा, बहुत बड़ी सेवा कुछ बाकी है, तो इसीलिए बच्ची को दादी को एक मतलब कुमार के रूप में भाई के रूप में दादी ने जैसे जन्म लिया। तो कभी भी इस शरीर से कंटालना नहीं है, भले संबंधों में कटुता हो, बीमारी हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो, लेकिन ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैं ये शरीर छोड़ूं। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा अगर छूटा तो क्या होगा? वो तो अंतमति सोगति बाबा ने कहा है ना, होगी। और हिसाब किताब अगर पूरा नहीं हुआ और होगा ही नहीं, तो तब तक परमधाम भी नहीं जा सकते। हरेक की कर्मातीत अवस्था भी अपनी अपनी है। तो इसीलिए सच्ची वानप्रस्थ अवस्था को और सच्चे संन्यास आश्रम को यहाँ अनुभव करके जाना। बचपन की पढ़ाई की अवस्था भी अनुभव कर ली, सेवा की अवस्था, जो गृहस्थ आश्रम यानी ये गृहस्थ है हमारा, तो देवी परिवार, भाई बहन माता पिता, ये जैसे परिवार का है, यंग है, तो ये भी कर ली। लेकिन जो वानप्रस्थ अवस्था यानी कि वाणी से परे, और वो वानप्रस्थ अवस्था जिस अवस्था में हम एग्जैक्टली उसी अवस्था को प्राप्त करें जिस अवस्था में हम परम धाम से आए थे, जिसके लिए ममा को भी बाबा ने भेजा पुनर्जन्म में। और सभी आत्माएं गई हैं, एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसने शरीर छोड़ा हो और परम धाम वापस गई हो, नहीं, कोई भी आत्मा नहीं है। सबने पुनर्जन्म लिया है, बचा हुआ जो भी हिसाब किताब है, तो बचा हुआ काफी सेवा का तो करके गए होंगे, सब कुछ करा, लेकिन जो वानप्रस्थ, इसीलिए बाबा कहता है ये तुम्हारी वानप्रस्थ है, इस अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे तो तब तक तो हम उसके अधिकारी भी नहीं बन सकते परमधाम जाने के। वानप्रस्थ अवस्था का भी अनुभव हो जाए, और बाबा ने कहा जितना जितना कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ेंगे उतना अपने में मुख्य परिवर्तन क्या अनुभव करेंगे, उतना उतना वाणी में आने की दिल ही नहीं होगी। कोई कहेगा कुछ भी तो बस जितना चार शब्दों में जो बात कह सकते हैं वो दो शब्द या एक शब्द में ही कही, बात पूरी होगी। ये कर्मातीत अवस्था का अनुभव है, जो कि हमने ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव किया। हमारे वैसे सौभाग्य की बात है, बाबा मम्मा दादियों के साथ रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा मिला कि ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो हम यहीं थे और ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का हमें अपनी आंखों से मौका मिला। हम इंजीनियरिंग पास करने के बाद ONGC में आसाम में पोस्टेड हुए, बहुत दूर था आसाम, शिवसागर नाम की जगह, लेकिन बाबा ने भेजते वक्त कहा था बच्चे जाओ वहाँ पर और जब आवश्यकता होगी बाबा बुला लेगा। और बाबा ने जैसे जनवरी में, मैं 67 में वहाँ गया, 67 में पास किया इंजीनियरिंग में, धनबाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और वहाँ पर ONGC ज्वाइन किया आसाम में, वहाँ गए, और उसके बाद देहरादून जाने के लिए निमंत्रण आया था बहन जी का कि वहाँ म्यूजियम बना रहे हैं आप आओ, तो बाबा से पूछा, तब तो साकार में बाबा थे, बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे वहाँ जाना, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ, मतलब भाव ये था प्लेन से आओ तुम। तो हमने तुरंत ही जनवरी की 11-12 तारीख थी 69, तभी जल्दी से छुट्टियाँ ली, प्लेन में कराया और अपने लौकिक पिताजी के साथ 17 जनवरी की सुबह यहाँ मधुबन में पहुँच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो उसमें हमने क्या देखा, क्योंकि कर्मातीत अवस्था तो हम सबको भी प्राप्त करनी है, वानप्रस्थ अवस्था के बाद संन्यास आश्रम की अवस्था, उसके बाद कर्मातीत होगी तो सब हम सब जाएंगे ही, लेकिन वानप्रस्थ अवस्था को मतलब जंप नहीं कर सकते, संन्यास आश्रम अवस्था को जंप नहीं कर सकते, उसमें भी पास होते हुए जाना है। जैसे हम लोगों ने लर्निंग स्टेज, पढ़ाई की स्टेज, बाबा की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, साथ में ये भी है जो अलौकिक गृहस्थ परिवार है हमारा, आश्रम है, और इसके बाद धीरे धीरे वाणी से परे। और बाबा को हमने क्या देखा अंतिम दो दिनों में, कि पहले तो जब भी बाबा से मिलते थे कि बाबा पूछते थे हाँ बच्चे क्या पुरुषार्थ है, क्या वो चल रहा है, हम बताते थे, क्या कोई प्रश्न होता था बाबा उसका समाधान करते थे, लेकिन अंतिम दो दिन में देखा 17 जनवरी को भी हम फ्रेश होके बाबा से मिलके फिर बाबा के पास गए, तो बस बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, और दृष्टि दे के ब्रकुटी देखा और बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी हमें बोलने की एक भी अक्षर जरूरत नहीं पड़ी, एक भी अक्षर, बाबा खुद मन की बात समझ गया। जो अव्यक्त मुरली में भी बाबा की 82 की मुरली में एक पढ़ रहा था, उसमें था कर्मातीत अवस्था का पहला लक्षण एक यही है कि हम दूसरे के मन की बात को बिना एक अक्षर बोले भी उसके समझ जाएंगे। अब वो प्रैक्टिकल हमने बाबा का 5-6 बार देखा 17 और 18 जनवरी को, बाबा के सम्मुख जाते थे, आज सेवा की बात पूछेंगे, आज पुरुषार्थ की बात पूछेंगे, ऐसे बस जाते थे, और बाबा हाँ लौकिक में तो पहले तो बाबा ना अभी 69 से पहले जब भी बाबा से मिलते थे 62 के बाद बाबा कहते थे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ आओ स्वीट चिल्ड्रन, यहाँ चित्र भी है ना बाबा का, तो प्रैक्टिकल में ऐसा होता था आओ बच्चे आओ, और हम लोग बाबा की भाव में मैग्नेटिक चुंबक की तरह खींचते चले आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा का ये अभ्यास इतना पक्का हो गया था, आप लोगों ने पढ़ाई है, बाबा ने लिख लिख के पक्का किया ना, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है और निर्मला आत्मा है, पक्का किया बाबा ने। तो जब ये अपना अभ्यास पक्का हो जाता है तो बाबा दूसरे को भी जैसे दृष्टि देते थे वो भी तुरंत आत्माभिमानी हो जाता था और बाबा की बाह में खींच के चला आता था। केवल इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता था, थोड़ी देर तक हम सब लोग वही बाबा का अनुभव करते थे प्रेम का, उसके बाद बाबा हाँ बच्चे आओ 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 बच्चे, तो बड़े प्यार से बाबा थपथपाता था, फिर जैसे कि हम देह में ना खिंच के, कोई आत्मा जाती नहीं है, लेकिन बाबा की शक्ति इतनी थी क्योंकि उन्होंने अपने को आत्मा अनुभव करा हुआ था, तो इतनी पक्की थी कि दूसरा भी विदेही हो जाता था। ये वास्तव में वाणी से परे अवस्था का अभ्यास, हम भी वाणी में ना आए, दूसरा भी वाणी में ना आए, दूसरे कहने हैं। ये तो हम लोगों के बहुत अनुभव है, बाद में कितनी बार दादी के पास जाते थे, आप सबका भी कईयों का अनुभव होगा, बाबा मामा के पास जब जाते थे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, और वहां जाते ही सब भूल जाता था क्या पूछने आए थे, बस दृष्टि लेते रहते थे उस अतीन्द्रिय सुख में, जैसे खो जाते थे। तो वानप्रस्थ अवस्था जो आज भी बाबा ने कहा, वाणी से परे का ये नहीं कि दिन भर में जो हम बोलते हैं वो तो ठीक है, जितना जितना उसका अभ्यास करेंगे वो वाणी से परे का होगा, लेकिन उस अभ्यास का रिजल्ट ये होगा कि हमारे सामने भी कोई अगर आएगा कोई बात लेके, प्रश्न लेके, कोई भी पूछने के लिए, वो वाणी से परे हो जाएगा, वो बोल नहीं सकेगा। असली वानप्रस्थ अवस्था का एक ये मतलब है। और बाबा क्या बताता है, ये बाबा ने कहा है ना कि वाणी से परे अवस्था भी है ये, क्योंकि आजकल मुरली में वरदान और स्लोगन के बाद और क्या पढ़ने में आता है, क्या आता है, हा? क्या चीज, इशारा, अव्यक्त इशारा, उसमें भी अभी क्या चल रहा है, पहले जनवरी में अलग टॉपिक पर चला, मतलब फरवरी अलग, अभी आजकल क्या चल रहा है, परखने की शक्ति का भी, वो भी चल रहा है उसमें। और बाबा ने ये बताया है, आपको एक बात खास याद रहेगी, बाबा ने ये बताया कि अब जो है माया का रूप ऐसा बच्चों के सामने आएगा, माया का रूप तो पहले दिन से आ रहे हैं जब से हम लोग ज्ञान में चले हैं, ठीक है, माया में, और कभी प्रॉब्लम आती है ना कोई, हाँ तो उसमें भी अंतर होता है, लेकिन अब माया का रूप ऐसे आएंगे जो बहुत मीठे ऐसे रूप होंगे, पता ही नहीं चलेगा ये माया। अभी मानो क्रोध आता है, पता चल जाता है ये माया है, अहंकार आया, ईर्ष्या आई, घृणा आई, द्वेष आए, बदले की भावना आई, ये सब निगेटिव चीजें हैं जो हमें मालूम है कि ये निगेटिव है, ना चाहते हुए भी आती हैं, तो पता चल जाता है ये माया का रूप है। लेकिन अब माया इतने सुहावने रूप में आएगी, बहुत मीठे रूप में आएगी माया आती है, जो बाबा कहता है बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और वो मीठा रूप ही ना बच्चों को अपनी तरफ नाम रूप के रूप में, अति स्नेह के रूप में, अति प्यार के रूप में भी वो आकर्षित कर लेगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को ये चेक करते चलना है कि मेरा जो रूप है न तो घृणा का हो न स्नेह का रूप, सबके साथ समान व्यवहार। हमारे पुराने भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है, हमारे पुराने सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और काफी महानुभाव बोल के गए हैं जिन्होंने, है कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना हमारा ऐसा हो कि इसके साथ बोले बिना हम मन की बात को शेयर ही ना करें, ऐसा भी स्नेह ना हो और ऐसा भी वो ना हो कि हाँ इसने ऐसा करा अब मैं भी इससे ये बदले की भावना हो, कोई बैर की बात, समान भाव। और इसी को ही गीता में कहा है, कौन सी अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, ये सारी अवस्थाएं ये समान रहे। तो ये अवस्था जो बोली गई है, ये ही अवस्था वास्तव में वानप्रस्थ अवस्था है। हमारे नैनों की सूक्ष्म वतन में क्या है, वहां वाणी तो है नहीं, लेकिन जब भी संदेशी जाती है, संदेश लाती है, बाबा इतना सब बताते हैं, कैसे, इशारों की भाषा। तो हमारी भी भाषा वो उस रूप में हो जाए, उस रीति से चली जाए जैसी वाणी से परे भाषा। तो ये वानप्रस्थ आज के मुरली में बाबा ने जो बोला ना, उसका एक भाव ये भी विशेष है कि न किसी से अति स्नेह, न कोई घृणा, सबके साथ हमारा समान व्यवहार रहे। और ये जितना समान व्यवहार सबके साथ रहेगा, वो समान व्यवहार हमें जो है सब आत्माओं के साथ बराबर सतयुग के लिए प्रेम भाव सबका, नहीं तो किसी से भी थोड़ा ज्यादा प्रेम हुआ तो जरूर किसी दूसरे से घृणा का भाव होगा, ईर्ष्या का भाव। इसीलिए ममा में एक ये विशेष गुण, बाबा में सबसे बड़ा गुण क्या था, हरेक को लगता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, सबसे ज्यादा बाबा मुझे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि किसी के साथ अगर ऐसी भावना भी होती थी, मुझे याद है हम देहरादून में थे तो सब प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, तो एक स्टूडेंट ऐसे थे वो काफी मतलब ना दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेते थे, परनिंदा, चुगली करना, उसका ये करना, बहनों का डिस्कशन करना आदि आदि ही। तो लेकिन बाबा के साथ जाने में उनका भी टर्न लगा, आए तो बहनों ने बाबा को थोड़ा इशारा दिया होगा कि ये आत्मा थोड़ा ऐसी है, अब सेवा में विघ्न रूप है थोड़ा सा इस रीति से। तो बस वहाँ पहले एक सप्ताह रहते थे, एक सप्ताह रहे यहाँ पर, तो बाबा ने उसे बहुत बहुत प्यार किया, सबसे ज्यादा सबको भी बुलाते थे बाबा, प्यार करते थे टोली, उससे एक्स्ट्रा बात करते थे उसको, तो वो सब देख देख के वो तो ये सोच रहा था, अंदर ही अंदर गिल्टी कॉन्शियस होता है ना आदमी कि बहन जी ने अगर बाबा से शिकायत की होगी मेरी तो मुझे तो थोड़ा बाबा इशारा देंगे, कुछ करेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत वैसे बस बाबा ने उसको इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, सब कुछ। तो जब सब कुछ हुआ और जाने का दिन भी आया तो बाबा ने सबको बड़ा प्रेम से छुट्टी दिया, और बहनें कुछ रुके, बहनों ने, बहन जी ने कहा बाबा मैंने तो बताया था वो तो बड़ा इस चीज में सेवा में विघ्न रूप है। तो बाबा ने कहा बच्ची अब तुम देखना उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो बहन जी जब बाद में गए तो वास्तव में उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया था, बिल्कुल वो पुरानी निंदा चुगली सब कुछ बंद करके इतना बाबा के प्रेम में वो घायल हो गया था। और उसने वैसे तो बहन जी ने कहा कि मैं तो ये सोच रही थी बाबा उसे कुछ सावधानी देंगे, लेकिन बाबा ने तो उसे इतना स्नेह दिया, और उसका स्वरूप भी फिर बाद में बहनों ने देखा। तो ये बाबा एंड रिजल्ट जान के देता है, अगर उसको ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो कबीरदास ने बोला है, ये ही वानप्रस्थ अवस्था का एक स्वरूप और है। और इसको कैसे लाएंगे, हम चाहते तो हैं हमारे अंदर भी आए। कई बार हम अनुभव करते हैं फलाना कोई कहता है, फलाना बहन उस भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, उस परिवार को ज्यादा, हमें उतना नहीं आदि आदि। कईयों के मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है, जैसा जिसकी सेवा की इच्छा होती है, भावना होती है। लेकिन होता वास्तव में ये है कि हमारी अपनी अंतरात्मा ही, हम जिस रूप में कोई चीज देते हैं बाबा कहता है वो उसी रूप में वापस आती है, बिल्कुल उसी रूप में। भी मोटे रीत से बोलते हैं, आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल मिलेगा आदि आदि। तो हम ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त करें, बाबा ने उसकी अभी रिसेंटली कुछ मुरलियों में, रिसेंटली माने कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले बाबा ने उसकी एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है। क्या युक्ति है? बाबा ने कहा अभी जब माया ऐसा आएगी, बहुत सुहावने रूप में आएगी, पता नहीं चलेगा ये माया है या कोई समस्या है। बाय द वे विघ्न, एक होता है विघ्न, एक होती है माया। विघ्न और माया में क्या अंतर है? बड़ी सहज चीज है। क्या अंतर है विघ्न और माया में? क्या अंतर है? हम सबको मिला देते हैं, कोई विघ्न आया तो। विघ्न जो है वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है। माया हमारे संकल्प कमजोरियों का नाम है, विघ्न स्थूल चीज का नाम। मानो हम सेंटर जाने के लिए तैयार हुए, गुरुवार का दिन था, भोग है, बहुत उमंग उत्साह से जा रहे हैं, बाहर निकले कार में या स्कूटर में, साइकिल पंचर, बस नहीं जा सकते, प्रॉब्लम हो गई कोई और हो। तो अब क्या करें? ऑटो रिक्शा देखा, रिक्शा देखा, कुछ नहीं मिला। तो ये तो था विघ्न, जो पंचर हुआ या साधन में रुकावट आई। लेकिन अंदर से जो संकल्प आ रहे, अब क्या होगा, अब चलो नहीं जाते, मुरली घर पढ़ लेंगे, शाम को चले जाएंगे, या यही शायद हमारे किस्मत में लिखा था। निगेटिव कोई भी कमजोरी की बात आती है वो है माया। अगर विघ्न के कारण आती है, विघ्न बाहर से आएगा स्थूल रीति से, लेकिन माया फिर उसके फलस्वरूप अंदर से बहुत सारे संकल्प पैदा कर देगी। तो इसीलिए अभी हमें ये देखना है, और बाबा ने पहले से ही सावधान कर दिया है, अब माया का ऐसा रूप होगा, बहुत मीठा रूप, प्यारा रूप, स्नेह भरा रूप। तो उससे क्या होगा? जब वो होगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये माया का रूप है। भाई बाबा ने तो बोला है सबसे स्नेह की बात करो, कोई भी किसी से भी कुछ नहीं, बहुत स्नेह से हम सब बात, मन की बात बता रहे हैं, सुन रहे हैं। बात तो वही हुई ना, एक दूसरे की बातों का क्लास के बाद बहुत देर तक लेन देन करना, या वो तो हम कई बार उसे स्नेह का रूप बहुत समझ लेते हैं, लेकिन वो होता है माया का रूप। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए बाबा ने बताया है एक शक्ति की जरूरत है आजकल। कौन सी? निर्णय करने और परखने की शक्ति। अब वो किस गुण के कारण आएगी? वो आएगी एकाग्रता के गुण के कारण। जितना हमारी एकाग्रता अच्छी होगी उतना हमारी परख शक्ति अच्छी होगी, जितनी हमारी एकाग्रता कम होगी योग में उतनी हमारी परख शक्ति और निर्णय शक्ति कम होगी। तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, हमें बहुत जरूरी है कि हम उसे अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। तो वानप्रस्थ अवस्था को और कुशाग्र करने के लिए कि हम बस जब परख लेंगे तभी तो हम वाणी से परे जाएंगे, तभी तो हम उसको पहचानेंगे। तो एक शक्ति ये चाहिए, परखने की शक्ति, और फिर परखने की शक्ति के बाद दूसरी शक्ति कौन सी चाहिए? कौन से? परखना, निर्णय, लगभग समान, लेकिन परख तो लिया, अब क्या करें? परिवर्तन, और उसी का ही दूसरा रूप सामना करने की शक्ति। परख भी लिया ये माया है, लेकिन सामना करने की शक्ति है ही नहीं, माया के वश हो गए तो फायदा क्या हुआ उस परखने का। तो परखने की शक्ति के साथ सामना करने की शक्ति, और उसके लिए बाबा ने पहले से ही बताया है कि बच्चों को अब उसके लिए क्या करना है, एक तो बाबा का हाथ और साथ सदा रहे बाबा, बस जब कभी हो हमें बाबा, बाद में जब कोई सामना करने की आवश्यकता होती है परिस्थिति का, प्रॉब्लम समस्या का, तो बाबा सामने कब आता है। वही द्रौपदी वाली बात है ना, द्रौपदी ने कहा भगवान से, हे भगवान मेरा चीरहरण हो रहा था तो आपने बहुत देर लगाई, तो भगवान ने क्या बोला, हे द्रौपदी तुमने पहले देखो अपने पांचों पतियों की तरफ देखा, वो सिर झुका के बैठे रहे, वो नहीं आए रक्षा, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य आदि आदि सभी महारथियों की तरफ देखा, और जब तुमने अंत में मुझे याद किया प्रभु रक्षा करो, तो देखो मैं नंगे पैर दौड़ा आया और तुम्हारी रक्षा की। बस यही हालत हम सब की है, माया को परख भी लिया लेकिन हमें याद कौन आता है। अभी अगर मैसेज आ जाए कि भाई फलाने आपके निकट संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत खराब है तबीयत, तो एकदम आएगा संकल्प चलने लग गया हो कैसे हॉस्पिटल में, कौन उसको देख रहा होगा, कौन, बाबा की याद आनी चाहिए। बाबा, और बाबा ने शब्द भी दिया मेरे साथी, मेरे बाबा, आओ आओ बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो। फिर ये बाबा का काम है कि किसकी बुद्धि को टच करके कि कैसे आपको इस समस्या से निकाले। लेकिन जब तक हम अपने को करते रहेंगे ना, तो तब तक उसका समाधान नहीं आएगा। एक सन्यासी राजा के पास आया, छोटा सा पात्र था भिक्षा पात्र, राजन मेरा ये भिक्षा पात्र भर दो। तो वो आया तो राजा ने अपने मंत्री को बोला इसको डाल दो इसमें सोने चांदी ये सर्फी जी। वो लाया, डाला, वो भरा नहीं, दोबारा लाया, तीसरी बार लाया, भर भर के लाया, लेकिन देखने में तो इतना सा पात्र था लेकिन बढ़ता ही नहीं था। तो राजा ने कहा महाराज इसमें जरूर कुछ बात है, हा? क्या बात है इसमें, क्या रहस्य है? तो उसने बताया कि महाराज ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, खोपड़ी है ना, और खोपड़ी में मन होता है, हा? मन में एक संकल्प पूरा हुआ दूसरे का पैदा दूसरा, चार और पैदा हो जाते हैं, वो पूरे हुए छह और पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो है ना, मन कभी भी तृप्त नहीं होता, तो इसीलिए ये पात्र जो है कभी भी तृप्त नहीं होगा। आप पूरा खजाना लाके भर दो तो भी ये खाली का खाली रहे। तो आवश्यकता ये है मन की, और बाबा ने भी पहले मन को ना कंट्रोल किया। मन को बाबा ने जब देखा अरे मन भाग रहा है, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा, हे मन मैं राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, फिर भी तू इधर उधर भाग जाता है, मेरे कहने पर नहीं चलता। और ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि तुम दोनों ने मिलकर मुझ राजा को इतना कमजोर कर दिया कि बस तुम दोनों जहां जाते रहे मेरे मुझ राजा को अपने पीछे पीछे भगाते रहे। लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अपनी सीट पर सेट हो गया। लौकिक में भी जब कोई सीट पर सेट होता है, कोई ऑफिसर है, कोई वो है पॉलिटिशियन है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, जब तक सीट पर है सब उसकी बात मानते हैं, और जब वो सीट पर नहीं होता है, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, चला गया, तो कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। ऐसे ही हम चाहते तो हैं कि अभी मेरा इसके साथ कहा सुनी हो रही है, मेरे में सहन शक्ति आए, लेकिन हम सीट पर सेट होके सहन शक्ति को ऑर्डर नहीं देते। तो क्या होती है, वो सहन शक्ति आती नहीं, कोई भी शक्ति नहीं आती। तो अभी आवश्यकता ये है हम जब भी कोई शक्ति और गुण की आवश्यकता हो, पहले हम देखें मैं स्वस्थिति में स्थित हुआ हूँ, स्वमान में स्थित हूँ, जो बाबा ने इतने स्वमान दिए, मैं विजयी रतन हूँ, कलप पहले वाली, कलप पहले भी बाबा आपने विजयी बनाया था, अभी विजयी बन रही हूँ मैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो कभी हार ही नहीं सकती, कलप कलप की विजय। तो बस वो करके तब हम शक्ति को बुलाते हैं, शक्ति तुरंत हाजिर हो जाती है। और हमारा बहुत बार का अनुभव है अपना, कि जो चीज की कल्पना करते हैं, सामना करते हैं कि ये प्रॉब्लम का हल हो जाए, वो देखना बाबा का काम है। बाबा कैसे किस व्यक्ति को टच करके, किस परिस्थिति को बदल करके बाबा उसका समाधान कर देता है। एक आवश्यकता ये है। और दूसरा आवश्यकता कौन सी है? दूसरी आवश्यकता ये है अपने उसको ये देखने की कि हमारा इसके अंदर वो वैसा रहे। बस अंतिम तो हम ये देखे हैं, एक मूर्तिकार था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। तो सब कहते थे आप इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बनाते हो? तो कहता नहीं, मैं तो मूर्ति बनाता ही नहीं, तो इतनी बढ़िया बढ़िया ये सब मूर्तियां जो आपने बनाई हैं, मैं क्या करता हूँ कि वो जो पत्थर में से मूर्ति बनानी है उसमें बाहर का जो व्यर्थ है वो निकाल देता हूँ तो मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। व्यर्थ निकाल दिया बस मैंने। तो आज इसी की आवश्यकता है कि हमारे अंदर विकारी संकल्प तो नहीं चलते। वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए, काफी हद तक विकारी संग, जो कि गुलजार दादी ने भी एक बार संदेश के थ्रू कन्फर्म किया था, बच्चों में विकारी संकल्प नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बहुत है। वो ऐसा है, उसने ये करा, ये नहीं करना चाहिए था, व्यर्थ। तो बस अब आवश्यकता ये है कि दो चार में से जीवन की अवस्थाओं में दो स्टेज तो क्रॉस कर ली, तीसरी क्रॉस कर रहे हैं वानप्रस्थ अवस्था। और जब ये क्रॉस हो जाएगी तो कौन सी अवस्था? संन्यास। बिल्कुल इस देह से भी संपूर्ण वैराग हो जाएगा। और बाबा ने जैसे आज की मुरली में कहा है, पूरी वैरागी स्थिति। और ये तो ऐसी स्थिति हम सब मिलके प्राप्त कर ले। ओम शांति, ओम शांति।
जगत का ये नाटक रहा न
हमें तो